ओमज्ञानतिमिरन्धश्रज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये वाचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो हम भागवतम के एक श्लोक का उच्चारण करेंगे जिसका उच्चारण गोपियों के द्वारा हुआ था। जब सारी गोपियां भगवान की जो वेणु है उसकी सराहना कर रही थी कि ये जो वेणु है या बांसुरी है कितनी अधिक प्रशंसनीय है और सौभाग्यशाली है कि कृष्ण सदा अपने हाथों में उसको रखते हैं और वो बांसुरी भगवान के आधारों का निरंतर पान करती रहती है। जब उसका गुणगान कर रही थी गोपियां सराहना कर रही थी तो उसी समय गिरिराज गोवर्धन की भी प्रशंसा की और आचार्यगण कहते हैं कि वास्तव में जो श्लोक हैं ये श्रीमती राधा रानी के द्वारा उच्चारित हैं और राधा रानी प्रशंसा करती हैं गिरिराज गोवर्धन की। तो ये उन्नत भक्त का एक लक्षण है, जैसे जैसे वो उन्नति करता है कृष्ण भावना में तो उसके हृदय में अन्य भक्तों के लिए प्रशंसा की भावना जागृत हो जाती है। थोड़ी थोड़ी उनके सेवा के प्रति प्रशंसा करता है भक्तों के या गुणों के बारे में। तो वैसे ही श्रीमती राधा रानी इतनी महान कृष्ण की प्रेमिका है भक्त है, इतना होकर भी वो अपने से भी श्रेष्ठ समझती हैं गिरिराज गोवर्धन को। तो ये दशम स्कंध के 21 अध्याय का 18वां श्लोक है जिसका टाइटल है गोपियों द्वारा कृष्ण के वेणु गीत की सराहना। हंताय मंत्री रबला हरिदास वर्यो यत्राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानं तनोति सह गोगनयोस्तयोर्य पानीयसूय वसकन्दर कन्दमूले हन्ताय मद्रिरबला हरिदासवर्यो यद्राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानं तनोति सह गोगनयोस्तयोर्य पानीयसूय वसकन्दर कन्दमूले। ये गोवर्धन पर्वत समस्त भक्तों में सर्वश्रेष्ठ है। सखियों ये पर्वत कृष्ण तथा बलराम के साथ ही साथ उनकी गौओं बछड़ों तथा ग्वाल बालों की सभी प्रकार की आवश्यकताओं को पीने का पानी अति मुलायम घास गुफाएं फल फूल तथा तरकारियों की पूर्ति करता है। इस तरह ये पर्वत भगवान का आदर करता है। कृष्ण तथा बलराम के चरण कमलों का स्पर्श पाकर गोवर्धन पर्वत अत्यंत हर्षित प्रतीत होता है। तात्पर्य उपर्युक्त उद्धरण श्रील प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत से लिया गया है। श्री विश्वनाथ चतुर्वेदी ठाकुर ने गोवर्धन पर्वत के ऐश्वर्य की विवेचना इस प्रकार से की है। पानी अब गोवर्धन पर्वत के झरनों से प्राप्त सुगंधित शीतल जल का द्योतक है, जिसे कृष्ण तथा बलराम पिया करते थे और जिससे अपने पाव और मुख धोया करते थे। गोवर्धन पर्वत शहद, आम का रस तथा पीलू रस जैसे अन्य पेय भी प्रदान करता है। सूर्यवस दुर्वा अर्थात घास को बतलाता है, जिससे अर्घ्य की धार्मिक भेंट दी जाती है। गोवर्धन पर्वत में घास भी होती है, जो सुगंधित मुलायम तथा गवों की वृद्धि एवं उनमें दूध बढ़ाने के लिए लाभप्रद है। इस तरह यह घास आध्यात्मिक पशुओं को खिलाने के लिए काम आती है। कंदर गुफाओं का सूचक है, जहाँ कृष्ण तथा बलराम उनके संगी खेलते बैठते और लेटते थे। ये गुफाएं तब आनंद देती हैं जब या तो बहुत गर्मी हो या सर्दी हो या फिर वर्षा हो रही हो। गोवर्धन पर्वत में खाने के मुलायम कंद, शरीर सजाने के रत्न, बैठने के लिए समतल स्थान तथा चिकने पत्थर, चमकीले जल और अन्य प्राकृतिक वस्तुओं के रूप में दर्पण तथा दीपक प्रदान करता है। तो इस प्रकार से गोवर्धन का जो महिमा है वो गोपियों के द्वारा श्रीमद् भागवतम में श्रवण करने को मिलता है। तो वास्तव में ये जो गिरिराज गोवर्धन है, जो साक्षात कृष्ण है, लेकिन जो गौड़ीय वैष्णव आचार्य गण है वो हमें कहते हैं कि गिरिराज गोवर्धन को हमें एक महान भक्त के रूप में देखना चाहिए और उसी रूप में उनकी उपासना करनी चाहिए। तो ऐसे जो गोवर्धन हैं, जिनके लिए श्रीमती राधा रानी एक उपाधि प्रदान करती है और वो उपाधि क्या है, हरिदास वरिया। श्रीमद् भागवतम में तीन लोगों को हरिदास कहा गया है। एक तो युधिष्ठिर महाराज को, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज का जो पूर्ण जीवन है कृष्ण की सेवा के लिए समर्पित था। और दूसरे थे उद्धव। उद्धव को भी हरिदास के रूप में पुकारा जाता है और कभी कभी नारद के लिए भी ये संबोधन प्रयुक्त किया जाता है। लेकिन जब श्रीमती राधा रानी ऐसे महान भक्त का गुणगान कर रहे थे, तब श्रीमती राधा रानी ने ये सर्वोच्च जो संबोधन है, उपाधि है, वो गिरिराज को प्रदान की। और ये तब प्रदान की जब श्रीमती राधा रानी बरसाना में थे। और बरसाना मतलब जहां माधुर्य रस टपकता है या गिरता है या बहता है। तो ऐसे स्थान में कृष्ण से अत्यधिक विरह की अनुभूति जब कर रही थी बरसाना के अपने महल में, तब सारी सखियां वो अभी भी सोकर उठी ही थी, उठकर उनको कृष्ण से एकाएक अत्यधिक विरह का भावना उनके हृदय में जागृत हो गया और वो क्रंदन करते हुए कहने लगे कि क्या करने से मुझे कृष्ण प्राप्ति संभव है, नंद नंदन के पुत्र का संग मुझे कैसे प्राप्त हो सकता है। जब ऐसा प्रश्न पूछा तो कई सारी सखियां, अलग अलग सखियां, अलग अलग चीजों में एक्सपर्ट है, अलग अलग शास्त्रों में, कला में। तो उसमें से एक सखी थी जिन्होंने कहा कि वास्तव में भगवान के महान भक्त की कृपा के द्वारा ही कृष्ण प्राप्ति संभव है। तो श्रीमती राधा रानी ने पूछा कि कैसे, कौन है ऐसा महान भक्त जिसकी जिसका आश्रय ग्रहण करने से कृष्ण प्राप्ति सरल हो सकती है या संभव हो सकती है। तो कोई भी गोपी बोल नहीं पाई। श्रीमती राधा रानी ने कहा कि मैंने गर्ग मुनि से सुना है, गिरिंद्र एव मुख्य, ये शब्द उच्चारण करती है। गिरिंद्र, गिरि मीन्स पर्वत, इंद्र मीन्स राजा। तो जो राजाओं में या पर्वतों में जो राजा है वो गिरिराज है। तो उनकी शरण ग्रहण करने मात्र से, उनका आश्रय स्वीकार करने मात्र से कृष्ण की प्राप्ति संभव है, उनकी पूजा करने से। इसलिए सनातन गोस्वामी बृहद भागवतामृत में इसका वर्णन करते हुए सुंदर श्लोक कहते हैं, गोवर्धनो जयति शैल कुलाधिराजो ए गोपिका भिरवदितो हरिदास वर्यः कृष्णेन शक्रमक भंग कृतार्चितोयम् सप्ताहमशकर पद्मतले व्यवस्थित। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि जिन गोपियों ने गिरिराज की स्तुति की है तो उसे समझा जाता है कि गिरिराज गोवर्धन कितने महान हैं। कहते हैं गोवर्धनो जयति शैल कुलाधिराजो, ऐसे गोवर्धन जो सारे पर्वतों में शैलों में राजा हैं, ये गोपिका भीर वदितो हरिदास वर्यो, गोपिकाएं भी उसे क्या कहती हैं, हरिदासों में सर्वश्रेष्ठ हैं। और इंद्र का जो घमंड है उसका नाश करने के लिए कृष्ण ने क्या किया, सप्ताहमश कर पद्म तले भी अवस्थित, एक सप्ताह तक अपने हस्त कमल में धारण करके रखा, इतना ग्लोरियस है। भगवान किसको स्पर्श करे कुछ समय के लिए तो वो महान महानता उसकी बढ़ जाती है, लेकिन यहां 7 दिनों के लिए कृष्ण उसे अपने करतल में स्थित करते हैं या रखते हैं। और फिर ये श्लोक श्रीमती राधा रानी ने उसी समय बोला जब इस प्रकार से गोवर्धन का उन्होंने गुणगान किया, और उन्होंने कहा कि व्यक्ति को गिरिराज गोवर्धन का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी जब जगन्नाथपुरी में थे और उन्होंने देखा कि चैतन्य महाप्रभु अप्रकट हो गए, जिनके अंडर वो सेवा और शिक्षा प्राप्त करते थे रघु स्वरूप दामोदर से, वो भी इस संसार से चले गए, रामानंद राय भी अप्रकट हो गए, उन्होंने कहा कि अभी मैं किसका संग करूं, किसके संग में जगन्नाथपुरी में रहूं। उन्होंने सोचा कि अच्छा है कि यहां से वृंदावन चला जाता हूं और गिरिराज के सर्वोच्च शिखर पर चढ़कर अपने प्राणों को त्याग देता हूं। इस भावना को हृदय में धारण करके रघुनाथ दास गोस्वामी दौड़ते हुए जगन्नाथपुरी से वृंदावन आते हैं आत्महत्या करने के लिए। उस समय किसी भी भक्त में कुछ जीवन में कष्ट आता था तो वो दौड़ के शिखर पर चला जाता था, सारे कष्टों का समाधान गिरिराज के ऊपर जाओ और जप लगाओ। तो रघुनाथ दास गोस्वामी से पहले कई सारी घटनाएं हुई थी, तो रघुनाथ गोस्वामी ने सोचा कि मुझे भी महाजनों जैसा गता सपन था कि पालन करना चाहिए, अनुगमन करना चाहिए। तो जैसे ही रघुनाथ दास गोस्वामी वृंदावन में आए तो रूप और सनातन गोस्वामी उन्हें मिले, और रूप सनातन उन्होंने इतना प्रेम दिया रघुनाथ दास गोस्वामी को मानो कि अपने बड़े भ्राता, इस प्रकार से चैतन्य चरितामृत में आता है कि बड़े भाई के समान रघुनाथ दास गोस्वामी को प्रेम प्रदान किया रूप सनातन ने, और उनको कहा कि आत्महत्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप तो चैतन्य लीला के भंडार हो, स्टोर हाउस हो, आप यदि अप्रकट हो जाते हो तो हमें महाप्रभु की लीलाओं को कौन श्रवण कराएगा, कौन प्रदान करेगा। इसलिए उनको आज्ञा दी, क्या आज्ञा दी, जाना है गिरिराज में तो जाओ, लेकिन गिरिराज के तलहटी में निवास करो। तो जाकर रघुनाथ दास गोस्वामी ने गोवर्धन के तलहटी में निवास किया, और बेस्ट प्लेस कौन सा है तलहटी में निवास करने का, राधाकुंड। राधाकुंड के तट पर रघुनाथ दास गोस्वामी निवास करते हैं और गिरिराज गोवर्धन की प्रार्थना करते हैं। उन्होंने गोवर्धन द्वादशकम लिखा है जिसमें 11 या 12 श्लोक हैं, जिसमें वो प्रार्थना करते हैं गिरिराज गोवर्धन को, निज निकट निवासम देहि गोवर्धनम में, कि हे गिरिराज गोवर्धन आप मुझे अपने निकट निवास दे दो, ताकि निकट निवास देने के कारण मुझे आपकी कृपा सरल हो सकती है और राधा कृष्ण के जो कार्यकलाप है उनको मैं समझ सकता हूं। तो इस प्रकार से गिरिराज गोवर्धन के निकट निवास करने के लिए महान जो आचार्य हैं वो आकांक्षा करते हैं और सदैव प्रार्थना करते हैं। तो ऐसी जो गोवर्धन लीला है भगवान ने प्रकट किए, विशेष रूप से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि इसलिए प्रकट किए कि भगवान सारे ब्रजवासियों को एक साथ एक समय में देखना चाहते थे और उनके साथ उस विशेष विशेष रस में आदान प्रदान करना चाहते थे। और श्रीधर स्वामी कहते हैं गिरिराज की इस लीला के बारे में, वो कहते कि गिरिराज की लीला के द्वारा भगवान ये स्थापित करना चाहते हैं कि हमें किसी अन्य की शरण ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है, किसी अन्य की आराधना करने की आवश्यकता नहीं है, गिरिराज गोवर्धन ही हमारे लिए क्या है, इनफ है। या फिर कृष्ण के अलावा किसी देवी देवताओं की आराधना हमारे लिए आवश्यक नहीं है, किसी और का आश्रय हमारे लिए आवश्यक नहीं है। तो ऐसी जो ये गोवर्धन लीला है जिसका वर्णन शुकदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को किया, जब परीक्षित महाराज बहुत अधिक उतावले हो गए कृष्ण की लीलाओं को सुनने के लिए, और बहुत सारे लीलाओं को उन्होंने सुना, और फिर शुकदेव गोस्वामी ने यज्ञ पत्नियों का वर्णन किया। ये यज्ञ पत्नियां वृंदावन से दूर स्थल में किसी गांव में निवास करती थी, ब्राह्मणों की पत्नियां, कृष्ण को कभी देखा नहीं था, लेकिन कुछ ऐसी स्त्रियां वहां उनके गांव में आती थी और गार्डन का काम आदि करते थे, तो वो स्त्रियां हमेशा कृष्ण और बलराम के बारे में बोला करते थे। और ये ब्राह्मण पत्नियों ने उन स्त्रियों से सुन सुनकर कृष्ण से इतना प्रेम हो गया कि ये सारी स्त्रियां अपना सब कुछ छोड़कर कृष्ण का संग प्राप्त करने के लिए लालायित थी। वो बल्कि इंतजार कर रहे थे कि कब हमें मौका मिले इस सारे सांसारिक कार्यों को त्याग कर कृष्ण का एकमेव आश्रय हम ग्रहण करें। तो इस भावना को लेकर ये यज्ञ पत्नियां अपने गांव में थी, तो कृष्ण और बलराम जानबूझ के उनके गांव के तरफ अपना जो गव्य चराने के लिए गए, और उस दिन उनके पास कुछ फूड नहीं था खाने के लिए, तो भगवान ने क्या किया, अपने सखाओं को भेजा, और फिर ब्राह्मणों ने मना किया, फिर यज्ञ पत्नियों के पास भेजा भगवान ने। यज्ञ पत्नियां को पता चला कि कृष्ण बलराम नजदीक ही हमारे गांव के पास है, तो उन्होंने सुवर्ण थाल निकाले और उसमें बहुत सारे व्यंजन भरे और अपने हाथों में लेकर दौड़ने लगी सारी वो ब्राह्मण पत्नियां, और कृष्ण सामने बलराम के कंधे में हाथ रखकर त्रिभंग रूप में बांसुरी हाथ में लिए खड़े थे। जब इन ब्राह्मण पत्नियों ने देखा कृष्ण को इस मुद्रा में, तो वो स्तंभित हो गए, स्तंभित होकर कृष्ण की ओर देखने लगी, और उनके पास कुछ वचन नहीं था बोलने के लिए, तो भगवान उनके उस भेंट को या व्यंजनों को स्वीकार करते हैं, और स्वीकार करके वो ब्राह्मण पत्नियां कहती हैं कि हे कृष्णा, हम तो आपके साथ ही निवास करना चाहती हैं, हम अभी अपने रिश्तेदार संबंधी पति बच्चे इनके पास वापस नहीं जाना चाहती, हम आपके निकट ही निवास करना चाहती हैं। तो कृष्ण ने कहा कि मेरा जो शारीरिक संग है वो इतना अच्छा नहीं है, बेस्ट क्या है, आपका जो मन है वो मुझ में लगाओ, आप जिस स्थान में निवास कर रही हो वहां ही रहो, लेकिन अपने मन को क्या करो, निरंतर मेरे स्मरण आदि में लगाओ। फिर भगवान उनको उपाय बताते हैं। वो यज्ञ पत्नियां कहती हैं कि क्या करने से आप में मन लग सकता है, तो भगवान ने कहा चार चीजें करने से मुझमें मन लग सकता है, श्रवणा दर्शना ध्यानात् मयि भावानुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतियात ततो ग्रहात्। भगवान ने कहा चार चीजें करोगे तो मुझमें मन लगना संभव है। श्रवणात्, सबसे पहले उन्होंने कहा श्रवणात्, दूसरा बारंबार दर्शनात्, मेरा दर्शन, और तीसरा है ध्याना, मेरा ध्यान करने से, और चौथा है भावानुकीर्तना। भावानुकीर्तना मतलब प्रेम के साथ भगवान का गुणगान करना, भगवान के नामों का उच्चारण करना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे न तथा सन्निकर्षेण। भगवान ने कहा इससे अधिक क्लोजनेस किसी और चीज से नहीं प्राप्त हो सकता, मेरे निकट रहने से भी श्रेष्ठतम है। इन चारों चीजों में एक भक्त को नियुक्त होना न ततो ग्रहण इससे श्रेष्ठ नहीं है। तो इस प्रकार से उन यज्ञ पत्नियों को भगवान ने भेज दिया और उस समय अश्विन का महीना चल रहा था। अश्विन महीना जीव गोस्वामी कहते हैं ब्रज के जो डिवोटीज थे या ब्रजवासी थे वो अश्विन में यज्ञ आदि करना अत्यधिक उपयुक्त मानते थे और इसी कारण से सारी तैयारियां चल रही थी। हाँ, क्या तैयारियां चल रही थी? इंद्र पूजा की तैयारियां हो रही थी, सारा साज सामान इकट्ठा हो रहा था, सारा ब्रज मानो किसी बड़े उत्सव आनंद और जल्लोष को मनाने के लिए खड़ा हो गया, ऐसा वातावरण पूरे ब्रज भूमि में हो गया था। और उसी समय ये ब्रजवासी अपने घरों को छोड़कर बाहर ही रहा करते थे, कभी जंगल में रह गए, कभी किसी कोने में रह गए, तो उस समय ये बाहर ही थे। तो कृष्ण और बलराम भी उस रात्रि वापस नहीं आए। दूसरे दिन जब सुबह सुबह आए तो कृष्ण और बलराम जैसे प्रवेश करने लगे वृंदावन में, तो उस समय उन्होंने देखा कि बहुत सारी तैयारियां हो रही हैं और सारे लोग कुछ ना कुछ सामान एकत्रित कर रहे हैं और किसी बड़े कार्यक्रम के लिए तत्पर हो रहे हैं। तो कृष्ण ने कभी प्रश्न नहीं किया, भगवान ने अपने पिता को कभी प्रश्न नहीं किया कि ऐसा क्यों कर रहे हो हे पिताश्री, लेकिन पहली बार भगवान कृष्ण कोई प्रश्न पूछ रहे हैं। हाँ, क्योंकि और इसलिए भी भगवान जानना चाह रहे थे और भगवान स्थापित करना चाह रहे थे कि मैं तो भगवत गीता में आगे चलकर बताने वाला हूं मंद बुद्धि के लोग क्या करते हैं, अल्प बुद्धि के लोग देवताओं की उपासना करते हैं और देवताओं की उपासना तो मेरे घर में है, सबसे पहले मुझे कहां से इसका खंडन करना होगा? अपने घर से ही दान की शुरुआत पहले अपने घर से करनी चाहिए, तब दूसरों को उपदेश देना चाहिए कि तुम भी दान करो। तो वैसे ही भगवान ने सोचा कि ब्रज भूमि से अपने घर से मैं शुरुआत करता हूं कि मेरे अपने लोग देवताओं की उपासना को छोड़कर हाँ मेरी हाँ कृष्ण की परम आराधना में लगे। तो भगवान की आयु 7 साल के थे और भगवान तो जानते थे, इसलिए शुकदेव गोस्वामी उनका वर्णन करते हैं सर्वात्मा सर्वदर्शना, ये दो शब्द यूज करते हैं। वो कहते हैं कि कृष्ण सर्वात्मा है, वो सारे हृदयों को जानते हैं और सबके विचारों को। और भगवान को ये भी कहा गया है भागवतम में सर्वज्ञ अंतर बहिरावस्थितम, अंदर भी है बाहर है सर्वज्ञ है, होकर भी वो प्रश्न पूछ रहे हैं, तो उनकी ये चतुरता है। भगवान इतने अधिक चतुर है कि उनसे बढ़कर कोई चतुर नहीं हो सकता। इसलिए भगवान ने जो प्रश्न पूछा उनके पिता को, कथ्यताम मे पिता कोयम संभ्रमो बहुपागतः किं फलं कस्य उद्देश्य केन वा साध्यते मखा। तो उन्होंने कहा कि हे पिताश्री आप बताइए, इतना सारा भारी काम करने में पूरा ब्रज लगा हुआ है, किं फलं क्या फल इसे प्राप्त होने वाला है, इसे कस्य उद्देश्य किस उद्देश्य से आप ये सब कार्य कर रहे हो, केन वा साध्यते मखा ये यज्ञ करके आप क्या प्राप्त करना चाहते हो, मुझे ये बताओ कौन से देवता है जिनकी पूजा करने में आप लोग लगे हो, क्या ये शास्त्रों का आदेश है या कोई ऐसी पॉपुलर सामाजिक ट्रेडिशन है समाज रीति है, आप मुझे बताओ। तो जब ये प्रश्न उन्होंने पूछा तो भगवान ने कहा मैं तो सुनने के लिए बहुत अटेंटिव हूं, तैयार हूं और मैं जानता हूं कि जो साधु वृत्ति का व्यक्ति होता है वो कभी किसी रहस्य को नहीं छुपाता, चाहे अपना पराया हो या मित्र हो। तो भगवान बहुत चाल बुनाकर अपने पिता को बोलते जा रहे हैं, उनके मन की बातें निकाल रहे हैं। अभी उनके पिता ने सोचा ये पहले बच्चा था तो कुछ उठपुटांग प्रश्न पूछ सकता था, लेकिन अभी मैच्योर हो गया, 7 साल का हो गया है, इसका प्रश्न कोई उठपटांग प्रश्न नहीं लगता। ये प्रश्न बहुत सटीक है, मार्मिक है, समझने योग्य है या उत्तर देने योग्य है। तो फिर भगवान की बातों को सुनकर नंद महाराज सीरियस हो गए और कृष्ण ने फिर से बोलना शुरू किया। भगवान ने कहा कोई भी कर्म हम करते हैं तो वो अंधानुगमन करते हुए नहीं करना चाहिए, हमें जानकर उस कार्य को करना चाहिए, तब उससे सफलता क्या होती है, हासिल होती है। वैसे भी भक्ति कई कार्यों को भी व्यक्ति जब जान के करता है तो उसका प्रभाव और अधिक होता है। तो उन्होंने कहा प्लीज 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 आप मुझे विस्तार से एक्सप्लेन करो। तो नंद महाराज बहुत खुश हो गए। नंद महाराज को इन्होंने पूछा शास्त्रों में कहा है या सामाजिक रीति है, तो ये पहली चीज नंद महाराज ने बोली। उन्होंने कहा कि ये तो एक सामाजिक रीति है, पॉपुलर ट्रेडिशन है, जिसको हम क्या कर रहे हैं, इस रूढ़ी को हम कई परम अपने पिछले सालों से हजार या कई सालों से इसका अनुगमन करते आए हैं। तो जब ये चीज बोली तो वैसे जीव गोस्वामी कहते हैं कि दो प्रकार के प्रमाण हैं, एक है शास्त्र प्रमाण और दूसरा है जो सामाजिक रूढ़ी है। सामाजिक रूढ़ी तब स्वीकार करनी चाहिए जब किसी आचार्य के द्वारा वो प्रमाणित हो, अन्यथा उस परंपरा को हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो नंद महाराज ने कहा परजन्यो भगवान इंद्रो मेघस्तशात्म मूर्तयः तेभि वर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पया। वो कहते परजन्यो भगवान इंद्र, इंद्र परजन्य देने वाले हैं आपने प्रतिनिधियों के द्वारा। उनके प्रतिनिधि कौन है, बादल है, मेघ है। तेभि वर्षन्ति, वो वर्षा करते हैं भूतानां जीवों के लिए, जल देकर जीवों का जीवन प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा हम ही नहीं कर रहे हैं बल्कि सारा संसार इंद्र की पूजा करते हैं, और इंद्र की पूजा के द्वारा हमें वर्षा प्राप्ति होती है, वर्षा के द्वारा अन्न मिलता है, और जिसके द्वारा हम जीवन धारण करते हैं। तो ये सारी चर्चा नंद महाराज बता रहे थे, और उन्होंने कहा जब ऐसे इंद्र की पूजा करें तो क्या होगा, धर्मार्थ और काम की पूर्ति होगी, जो एक मनुष्य के लिए अत्यधिक लाभदायक है। और यदि कोई व्यक्ति ऐसे धार्मिक आचरण को कार्य को त्यागता है तो निश्चित रूप से त्यागता है, किस कारण से, काम के कारण, शत्रुता के कारण, भय के कारण, लोभ के कारण। तो उस व्यक्ति का वो व्यक्ति अत्यधिक दुर्भाग्यशाली है। तो इस प्रकार से भगवान ने जब सुना कि ये कोई शास्त्र सम्मत नहीं है, आचार्य के द्वारा सम्मत नहीं है, ये एक ऐसी रूढ़ी परंपरा है, सामाजिक रीति है, जिसको हम स्वीकार कर रहे हैं। अब जैसे भारत में भी कई ऐसी, हर परिवार में कुछ ना कुछ प्रथा है जिसको व्यक्ति पालन करते जाता है। एक बार एक बूढ़ी स्त्री थी, एक स्त्री थी जिसकी बेटी की शादी होने वाली थी, तो शादी में बहुत सारी तैयारियां हो रही थी, और उसी बीच में उस शादी के मंडपम में और घर में बिल्ली हमेशा घूमा करते थे। अभी इस माताजी को लगा कि बिल्ली कहाँ घूम रही है बीच बीच में, ये तो बाधा दे रही है शादी के बीच में, हम कुछ बाहर निकले घर से बिल्ली दूर से देखे तो भी लोग डर जाते हैं, और ये शादी के मंडप में हर समय बिल्ली घूम रही है। तो उसने क्या किया, एक टोकरा लिया, टोकरा क्या कहते ढकने के लिए, टोकरी ली, और उसके नीचे बिल्ली का गर्दन पकड़ा, उसके नीचे ढक दिया। अभी इस चीज को किसने देखा था, उसके बेटी ने देखा था, जिसका विवाह तैयार थी सारे आभूषण आदि पहन के। और फिर उसको शादी वगैरह हुई, विदाई हुई। अभी ये जो बेटी जिसकी शादी हुई थी, जब उसकी बेटी की शादी होने वाली थी, अभी इसको पता नहीं है कि बिल्ली को क्यों ढका गया था। अभी उसको लगा कि शादी में एक रिवाज है, प्रथा है, क्या करने का, बिल्ली ढक के रखने का। तो उसने भी क्या किया, जब शादी का समय आया उसके बेटी का, तो एक बिल्ली को ढक के रख दिया। हाँ, इसी प्रकार से ये हर घर घर की प्रथा है। तो जो शास्त्र सम्मत नहीं है, आचार्य के द्वारा सम्मत नहीं है, तो उसको प्रमाण के रूप में नहीं स्वीकारा जाता। तो लेकिन यहां भगवान ने भी ये कहा, तो भगवान फिर सोचने लगे कि क्या इनको उपदेश दो। हाँ, इन्होंने फिर नया वाद शुरू किया। एक मायावाद होता है, यहां इन्होंने कर्मवाद का प्रचार करना शुरू किया, कर्म मीमांसा सिद्धांत, जिसमें भगवान कहने लगे कर्मणा जायते जंतु, कर्म के द्वारा ही जंतु उत्पन्न होता है जीव। कर्म नैव प्रलियते, प्रलियते मीन्स विनाश, कर्म के द्वारा ही उसका विनाश होता है। सुखम दुखम भयम क्षमम कर्म नैवाभिपद्यते, और सुख दुख आदि वो कर्म के द्वारा ही प्राप्त करता है। मतलब भगवान ये स्थापित करना चाहते थे कि कोई वास्तव में परम नियंता नहीं है, कर्म ही सर्वोच्च है, और ये जो प्रकृति है वो सर्वोच्च है, नियंत प्रकृति ही सबको सब कुछ देने वाली है। इस प्रकार से इस सिद्धांत को वो प्रचार करने लगे, और परम नियंता और देवताओं की जो महत्ता है उसको निम्न या कम दिखाने लगे भगवान। और इसके द्वारा उन्होंने अपने पिताश्री को कहा कि वास्तव में हमें इंद्र की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। इंद्र हमारा कोई भाग्य नहीं बदल सकता, इसलिए उनकी क्यों पूजा करने, वो स्वयं ही बंधन में है। ब्रह्मा ने बोला है उनके बारे में, यस्मिन्द्र गोप मथवेन्द्र मोहस्व कर्म बंधान रूप फल भाजन मातनोति। तो उन्होंने कहा कि ये जो इंद्र से लेकर छोटा जो कीड़ा है उसका भी नाम इंद्र गोप है, वो भी भौतिक कर्म के बंधन में बंधा हुआ है। तो ऐसे इंद्र की आराधना उसकी पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें क्या करना चाहिए, इंद्र की पूजा को स्वीकारना नहीं चाहिए, इंद्र की पूजा को छोड़ देना चाहिए। तो फिर नंद महाराज आश्चर्यचकित हो गए, उन्होंने कहा, बल्कि कृष्ण बोलने लगे कि हमें तो उनकी पूजा करनी चाहिए जिनके द्वारा हमारा उदर निर्वाह होता है। फिर भगवान एक उदाहरण देते हैं। भगवान ने कहा कि एक स्त्री जो पति उसका पालन पोषण कर रहा है, उसके अलावा वो किसी और पति से, किसी और पुरुष से प्रेम आलापन करती है, उस स्त्री को चार पत्नी कहा गया है, और वो जिससे प्रेम करती है उसे चार पति कहा गया है। मतलब जिसका जिस जो उसका भरण पोषण कर रहा है उसकी सेवा न करके वो क्या करती है, किसी और से प्रेम आलापन करती है। तो हमारा वैसे ही है, भगवान कहते हैं कि हमारा पालन पोषण हम वैश्य आदि हैं, कोई और करता है, और हम इंद्र की पूजा में लगे हैं, ये उचित नहीं है, ये अनुचित नहीं है। पहले हमें अपने कर्तव्य को समझना होगा और उसके अनुसार हमें कार्य करना होगा। फिर भगवान वर्णाश्रम धर्म का वर्णन करने लगे। भगवान ने कहा वर्तत ब्राह्मणा विप्रा राजन्यो रक्षया भो वैश्यस्तु वार्तया जीवे शूद्रस्तु द्विज सेवया। भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण का कार्य है स्वाध्याय अध्ययन, दूसरों को शिक्षा प्रदान करना, और जो क्षत्रिय है उनका कार्य है रक्षा आदि प्रदान करना, और जो वैश्य है उनका कार्य है व्यापार आदि करना, और शूद्रों का कार्य है द्विजों की सेवा करना। तीन जो वर्ण है वो द्विज है, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, इनकी सेवा में नियुक्त होना। लेकिन उन्होंने कहा, भगवान कहते हैं हमारा तो कार्य एक ही है, बल्कि वैश्यों के लिए भी चार कार्य है। भगवान कहते हैं कृषि वाणिज्य गोरक्षाम कुसिदम तुर्यमुच्यते वार्ता चतुर्विधा तत्र वयम् गोवृत्तयो निशम। भगवान ने कहा हम वैश्य हैं, लेकिन वैश्यों में भी अलग अलग कैटेगरी है, वैश्यों के अलग अलग कार्य है। कुछ वैश्य कृषि करते हैं, कुछ व्यापार करते हैं, कुछ गो रक्षा करते हैं, कुछ लेन देन का बिजनेस करते हैं, इसमें भी हमारा एक कार्य है। हमारा कार्य क्या है, गो रक्षा। तो यदि हम गो रक्षा करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हमारा पूरा ये कार्य पृथ्वी और ये जो गिरिराज गोवर्धन है उस पर निर्भर है। फिर भगवान ने कहा महेंद्र किम करिष्यति, ये जो यंत्र है वो क्या करेगा, उससे हमें कुछ लाभ नहीं है। हाँ, वो तो सब जगह वर्षा करता है, पहाड़ों में करता है, पत्थरों में करता है, समंदर में करता है, जहां वर्षा की आवश्यकता नहीं है, कोई उसकी और सब तो उसकी पूजा नहीं करते, लेकिन हमें क्यों उनकी पूजा करनी है। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा, हे पिताश्री, हम तो जंगल में निवास करते हैं, वृंदावन में, हमें क्या करना चाहिए। जंगल में हम निवास करते हैं तो हमारे केवल दो ही आश्रय है, एक है गाय और दूसरे है ब्राह्मण। हमने इतने सारे देवताओं की पूजा की लेकिन कभी देवताओं को अपने आंखों के सामने नहीं देखा, वो देवता कभी प्रकट नहीं हुए हमारे आंखों के सामने, उन देवता ने कभी खाया नहीं है, पिया नहीं है, हमारे भोगों को, पूजाओं को कभी स्वीकारा नहीं है। तो ऐसे देवताओं की पूजा करने का कोई लाभ नहीं है। कभी इंद्र को देखा इतने सालों से? नंद महाराज कहते, बेटा इंद्र को आज तक नहीं देखा, इतने सालों से पूजा कर दी उसकी, इतने इतने यज्ञ में आहुतियां डाल दी, इतने व्यंजन अर्पित कर दिए, अभी पूरे पूरा भगवान का जो वाक्शाल है उसका प्रभाव किस पर हो रहा था? नंद महाराज पर हो रहा था। तो नंद महाराज कृष्ण के इस चर्चा को स्वीकार कर रहे थे और भगवान ने अभी ठोस प्रस्ताव रखा। होता है ना, बहुत सारी चर्चाएं करने के बाद आप कहते बस अभी यही चीजें हैं मेरी, इसकी पूर्ति करना है तो बात करो, अन्यथा निकलो यहां से। तो वैसे भगवान ने एक प्रस्ताव रखा, ठोस प्रस्ताव, 24वें अध्याय में आता है। भगवान कहते हैं, तस्मात् गवाम् ब्राह्मणानाम् अत्रे चारव्यतां मखा ये इन्द्रयाग समारम्भात् तैरयम् साध्यतां मखा। उन्होंने कहा, हमें क्या करना है, अभी यज्ञ करना है इंद्र के यज्ञ को बंद करके, और किसकी पूजा करनी है? तीन चीजों की पूजा करनी है, गवाम गायों की, ब्राह्मणों की और गिरिराज गोवर्धन की। ये भगवान का ठोस प्रस्ताव था। भगवान ने कहा इनकी पूजा करनी है, और भगवान कहते हैं इनका इनकी या इनकी पूजा करने से, इनके लिए यज्ञ करने से सारा ब्रज क्या हो सकता है? आनंद और सुख की प्राप्ति कर सकता है। हर वास्तव में कृष्ण को प्रिय ही है, ब्राह्मण नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च, भगवान उनके हितकारी हैं। गौओं के तो इतना अधिक भगवान प्रेम करते हैं, सब प्रकार का कार्य उन्होंने छोड़ा, एक ही कार्य उन्होंने स्वीकार किया, जो परम भगवान है, गौओं की सेवा करना स्वीकारा। और जब छोटे बालक थे तो माता यशोदा ने कहा, बेटा बहुत सारे कंकड़ पत्थर आदि होते हैं, कांटे होते हैं, अभी गवे चराने जा रहे हो, आपके लिए मैंने शूज लाए हैं, जूते लाए हो। हाँ, जूतों का नाम सुनते ही कृष्ण थोड़े चकित हो गए। और बेटा इतना ही नहीं, आ इतनी धूप होती है तो मान ले छाता भी लेके आया हो, आए हो। तो कृष्ण ने कहा, कितनी लाए हो छाता? कितनी? एक। जूते कितने? एक पैर। मुझे इतने नहीं चाहिए, इतने कम नहीं, कितने चाहिए मुझे? जितने पास, जितनी मेरे पास गवे हैं, हर एक गवो के लिए एक छाता और हर गवे के लिए दो पैर शूज। हाँ, तो माता यशोदा चुप हो जाती हैं। गवे पहनेंगे, गवे छाता लेके चलेंगे तो मैं भी उसको स्वीकारूंगा। इसको कहते हिताय चर। हाँ, हिताय में हम अपना हित पहले चाहते हैं, हमें कोई कहे प्रभु जी प्रसादम की प्लेट लगा के रखो, मैं आऊंगा बाद में, पहले कौन सी प्लेट लगेगी? अपनी। बाद में किसकी? याद रहा तो जिस प्रभु ने बोला है उसके लिए प्रसाद प्लेट लगा के रखेंगे, वो हितायच नहीं है। यहां कृष्ण कह रहे हैं मैं हितायच हूं, ब्राह्मण का हित और गौओं का हित। ब्राह्मण का हित चैतन्य महाप्रभु जब अपने स्टूडेंट्स के साथ गया के लिए यात्रा करने जा रहे थे तो उन्होंने देखा उनके स्टूडेंट्स ब्राह्मणों से मजाक कर रहे थे। महाप्रभु को ये जचा नहीं, चैतन्य महाप्रभु ने कहा इनको बड़ा पाठ पढ़ाता हूं, ब्राह्मणों से कैसे व्यवहार किया जाता है, कैसे उनका आदर सम्मान किया जाता है, कृष्ण के लिए अत्यधिक प्रिय है ब्राह्मण। तो चैतन्य महाप्रभु ने बुखार आने का बहाना बनाया, इतना बुखार, हाई फीवर, और फिर कहा, सारे उनके स्टूडेंट डर गए, निमाय पंडित को बुखार हो गया। तो निमाय पंडित ने कहा कि मुझे बुखार हो गया, लेकिन दवाई भी एक ही है, टॉनिक, पीने वाली दवाई। जब छोटे थे तो बुखार होता था तो माँ लाल कलर की दवाई पिलाती थी, बेटा लाल कलर की दवाई पी लो, बुखार उतर जाएगा। चैतन्य महाप्रभु ने भी ऐसी टॉनिक ढूंढी, क्या बोला उनके स्टूडेंट्स को, बोला मुझे भी बुखार है, वो उतर नहीं रहा है, चल रहा हूं गया की ओर। मंदराचल पहुंचे वो, जहां मंदराचल गया बिहार में आता है, गया से पहले जा वो भगवान पहुंचे चैतन्य महाप्रभु, और वहां दर्शन करने के लिए जाने वाले थे वहां के विग्रह के, देखा इतना अधिक बुखार है तो मेरे लिए दवाई चाहिए, तो दवाई क्या, उन स्टूडेंट्स को कहा कि जाओ सारे ब्राह्मणों के पास, ब्राह्मणों के चरणों को धो और धुला हुआ जल लेके आओ और मुझे पिलाओ, वो मेरे लिए क्या है, दवाई है बुखार की। तो सारे स्टूडेंट जाते हैं ब्राह्मणों के चरण धो, महाप्रभु धुलवाते हैं उनके द्वारा, ब्राह्मणों की सेवा करवाते हैं, उनसे चरण जल वो पीते हैं और उनको भी पिलाते हैं। तो इस प्रकार से चैतन्य यहाँ कृष्ण कहते हैं गवे ब्राह्मणों की पूजा आराधना करनी चाहिए और गिरिराज की भी। तो भगवान कृष्ण ने सबके जो आर्ग्यूमेंट्स थे सबको हरा दिया और कहा कि बड़ा जो उत्सव है वो मनाना चाहिए, और जितने भी यज्ञ इंद्र की पूजा के लिए जितना भी सात सामान लाया है उनको तीन भागों में बांटो। हाँ, एक तो अग्नि के लिए होना चाहिए, क्योंकि फायर अग्नि देवता को हम देखते हैं यज्ञ में आहुति देने के लिए। दूसरा, ब्राह्मणों को संतुष्ट करने के लिए दक्षिणा और गवे उनके लिए होनी चाहिए दान के रूप में, और कई प्रकार की गिफ्ट्स होनी चाहिए। और तीसरी चीज, गिरिराज गोवर्धन के लिए नाना प्रकार के व्यंजन होने चाहिए, वो बनाओ, अन्नकूट फेस्टिवल मनाएंगे। तो ऐसे सारा जो इंद्र पूजा का सामान है तीन भागों में बांट दिया भगवान ने, और इनकी पूजा या उनकी सेवा के लिए तैयार किया। इतना ही नहीं, भगवान ने कहा पंचताम विविधापा का सुपंता पाय साधया, भगवान ने कहा और अधिक कुकिंग करो, पाय साधया, खीर अधिक बनाओ। हाँ, तो भगवान गिरिराज को खीर बहुत पसंद है। मैं कल पढ़ रहा था गिरिराज के बारे में, तो वर्णन आ रहा था कि जब गिरिराज को भोग लगाया तो उनको सबसे पहले जो आगे रखा था उनके वो माल हुआ था, उसके बाद क्या रखा था, ऐसा सीक्वेंस था, किसके बाद क्या। जब हम भी अपने लिए परोसते तो जब सबसे नजदीक कोई चीज रखते हैं तो पता चलता है कि वो हमारे लिए बहुत प्रिय है, प्रिय चीज को आप नजदीक रखते हो हमेशा। तो वैसे गिरिराज को मालपुआ बहुत पसंद है, तो मालपुआ ऐसे बहुत रखा वहां अन्नकूट क्षेत्र। आप परिक्रमा करते हो तो इसको हम गोवर्धन से लेकर जो अन्य और गांव है वो अन्नकूट क्षेत्र है, जितना भी ब्रजवासियों ने भोग लगाया था वहां लगाया था और फिर वहां से परिक्रमा शुरू की थी। तो इस प्रकार से भगवान ने कहा इतने सारे व्यंजन बनाओ, हम गोवर्धन की पूजा करेंगे, अन्नकूट उत्सव मनाएंगे, और इस अन्नकूट उत्सव के बाद जब गिरिराज स्वीकार करेंगे उस भोग को, तो इस सारे प्रसादम का वितरण कुत्तों से लेकर चंडाल तक सबको करो, लेकिन एक व्यक्ति को मत करो। सबने अपने काम खो दिया, ऐसे कौन वो व्यक्ति है, सबको प्रसाद बांटो इस टेम्पल हॉल में, लेकिन एक डिवोटी को मत दो। तो वैसे ही जब बोला कृष्ण ने तो ब्रजवासियों ने कान खड़े कर दिए, कौन है वो व्यक्ति जिसको देने के लिए मना किया है। कृष्ण ने कहा इंद्र को मत दो। सारे लोग ब्रजवासी चकित हो गए, मौन हो गए, उन्होंने सोचा ये क्या बोल दिया, कुत्ते को देने के लिए कहा, चंडाल को भी देने के लिए कहा, फिर इंद्र के लिए मना किया है, क्यों क्यों, क्योंकि भगवान एक भक्त की सारी कमियों को स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन डिवोटी के अंदर जब घमंड आ जाता है, गर्व आ जाता है, भगवान उसको सहन नहीं करते। इसलिए गोपी गीत में गोपियां कहती है कृष्णा आप क्या हो, निज जन, अपने जनों का जो घमंड है वो
उसका विनाश करने के लिए एक्सपर्ट हो, गोपियां कहती है। तो भगवान को स्वीकार नहीं हो रहा था, इंद्र इतना घमंडी, और बल्कि इंद्र के ऊपर एक प्रवचन की सप्ताह होना चाहिए। इंद्र के जीवन में कितने घटनाएं हैं कि जिनकी कोई सीमा नहीं है। आधिक प्रॉब्लम कृष्ण के लिए किसी ने खड़ा किया है, सारे अवतारों में किसने किया है? इंद्र ने। कितने सारे प्रॉब्लम्स खड़े कर दिए, भगवान को हमेशा अवतरित होना पड़ता है। इसलिए कृष्ण वो कहते हैं, इंद्रारे व्याकुलम लोकम हृदयन्ति योगे योगे। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जो श्लोक है उसकी दूसरी लाइन में आता है, इंद्र आरी, आरे मीन शत्रु, इंद्र के शत्रु के विनाश के लिए भगवान हर युग में अवतरित होते हैं। हर अवतार के देखो इंद्र से कुछ ना कुछ कनेक्शन है। तो इस प्रकार से यहां भी ब्रज में भगवान आए तो भी इससे रहा नहीं गया, यहां भी कुछ ऐसी उठपटांग हरकत करने के लिए तैयार हो गया। तो ऐसे जो इंद्र थे, इतना घमंड उनको था, जिसको चूर करने के लिए भगवान ने ये किया। तो जैसे किसी को रेगुलर आप कोई चीज देते हो और एक बार नहीं दो, हाँ, तो उसको थोड़ा सा और लगेगा, क्रोधित हो जाएगा। अभी यहां रोज ही हर साल इंद्र की पूजा हो रही थी, अभी एक बार सहन कर लेता क्या बिगड़ता उसका? नहीं सहन करूंगा, हाँ, सहन नहीं हो सकता मुझसे। अभी इतने सालों तक तुम्हारी पूजा हो रही है, अरे बाबा एक साल के लिए सहन करो ना थोड़ा सा। कहते नहीं सहन कर सकता। भगवान ने कहा ठीक है, अभी दिखाता हूं तुम्हें। हाँ, तो वैसे ही हमारे जीवन में भी यही स्थिति है। इंद्र के समान भी हमारी स्थिति है, इंद्र से भी अधिक कठिन स्थिति है। तो ऐसे जब भगवान ने उन सबको आदेश दिया और उन्होंने कहा कि जब सारा ऑफरिंग आदि करोगे तो क्या करो, सारे मिलकर गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करो। गवा वर्धनम वा यतांस गोवर्धनम। जीव कवि कर्णपुर इसका अर्थ देते हैं गोवर्धन शब्द का। वो कहते हैं कि जो गवों को वर्धित कराते हैं या ब्रजवासियों के आनंद को बढ़ाते हैं वो वास्तव में गोवर्धन है। तो फिर भगवान कहते हैं, स्वलंकृता भुक्तवंता स्वनोलिप्ता सुवाससा प्रदक्षिणां च कुरुता गो विप्रा अनल पर्वतान। चार चीजों की परिक्रमा करने के लिए कृष्ण ब्रजवासियों को कहते हैं। वो कहते हैं परिक्रमा के लिए निकलोगे तो कैसे निकलो? सो अलंकृता, अच्छे खासे वस्त्र धारण करो, अलंकार धारण करो, भुक्तवंता स्वनोलिप्ता, इस प्रकार से निकलो और गौओं की, ब्राह्मण की फायर जो यज्ञ की यज्ञ है और इस पर्वत की, ऐसे चार चीजों की परिक्रमा करो। तो सब जब ये बोला कि चारों की परिक्रमा करो तो ब्रजवासियों को लगा गौओं की परिक्रमा कैसे करें, इतनी सारी गवे, एक की गवे 9 लाख है, उनकी परिक्रमा करने में जीवन जाएगा। भगवान ने कहा डरो मत, एक गाय लाके रखो, एक गाय की क्या करो परिक्रमा करो, बाकी सारे गवों के परिक्रमा हो जाएगी। सारे शांत हो गए, ब्रजवासी खुश हो गए। तो एक गाय, हर एक ने एक गाय लाई, उस गाय की परिक्रमा की और फिर गोवर्धन की परिक्रमा उन्होंने शुरू की। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं उन्हें कि आप मुझे ये जो गिरिराज हैं वो सर्वाधिक प्रिय हैं, और ऐसे गोवर्धन की पूजा अर्चना करने के लिए वो उत्साहित करते हैं ब्रजवासियों को। और भगवान कहने लगे कि जो भी व्यक्ति गिरिराज गोवर्धन को अर्पित उस प्रसाद को स्वीकार करता है, निश्चित रूप से उसका जन्म ब्रज में होगा। ये भगवान ने वचन दिया है, और वो व्यक्ति सारे रोगों से मुक्त होकर हमेशा मेरा जो स्मरण है उसके जीवन में वर्धित होगा। तो ऐसे कई सारे आशीर्वाद भगवान ने ब्रजवासियों को दिए कि गोवर्धन की पूजा, उनकी परिक्रमा, उनकी अर्चना, उनकी सेवा या उनको भोग आदि लगाने से क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सारे ब्रजवासी गणों को दीपावली से एक दिन पहले ये सब प्रवचन हो रहा था। फिर दीपावली आई जो कल का दिन था, उस दिन सबने उस महोत्सव को मनाया, और फिर आज का दिन है प्रतिपदा। तो आज के दिन गोवर्धन पूजा का दिन था। तो आज के दिन सारे ब्रजवासियों ने तैयारियां कर ली कि आज इंद्र की पूजा छोड़कर आज हम क्या करेंगे, गोवर्धन की पूजा करेंगे। तो गोवर्धन की पूजा के लिए भगवान ने जो जो आदेश दिए थे वो सारे पालन करने के लिए ब्रजवासी तैयार थे, बल्कि उससे अधिक आइडिया उन्होंने सोचे। सारे गोवर्धन के इर्द गिर्द बड़े बड़े अक्षरों में फ्लैग्स लगाए, हाँ, गोवर्धन की स्तुतियों में कई सारा जो श्लोकाल आदि है, प्रेयर्स है, ये सब लगाया ब्रजवासियों ने, और सारे शिखरों में ऊपर चढ़कर बैनर्स लगाए, और कई जगहों में जाकर सुगंधित जल आदि छिड़का, और फिर कई ऐसे सरोवर बनाए कि जिनमें ब्रजवासी लोग कुकिंग कर करके स्वीट राइस रखते थे, स्वीट राइस का सरोवर, खीर दाल का सरोवर, मालपुआ का एक सरोवर। अभी बर्तन, छोटे छोटे बर्तन में थोड़े भोग लगाएंगे। गिरिराज इतने अवार्ड हुए हैं, इतने ऊंचे हैं, हाँ, लड्डू गोपाल इतने हैं, तो हम इतनी सी कटोरी रखते हैं उनके सामने, बल्कि लड्डू गोपाल से बड़ा बर्तन रखना चाहिए उनके सामने, डेटिस के साइज के अनुसार नहीं। हमारा हृदय, कोई कहेगा कि नहीं हमारा हृदय बड़ा है, बर्तन में क्या रखा है। इसलिए लोग क्या करते हैं, इतने सा ग्लास रखेंगे जिसमें उंगली भी नहीं जा सकते। भगवान आपके लिए, आपकी साइज इतनी है तो आपके लिए इतना सा ग्लास। तो भगवान यहाँ गिरिराज इतने अवार्ड हमें थे, तो ब्रजवासियों ने कोई कंजूसी नहीं की, ब्रजवासी गण तैयार हो गए उत्साह के साथ। जीव गोस्वामी ने इस लीला का वर्णन किया है और विस्तार से, तो वो कहते हैं दूध, दही, घी, कलरफुल अलग अलग जो पेय हैं उनके सरोवर बनाए गए, और वेजिटेबल्स भी कई जगहों में, कई सरोवरों में डाली गई, बड़े बड़े गड्ढे खोदकर प्रॉपरली। तो ये सब भोगा लगाने की तैयारी हो रही थी, और फिर साथ ही साथ म्यूजिक बज रहा था, कीर्तन हो रहा था, ड्रम नगाड़े बज रहे थे, जल्लोष हो रहा था, क्योंकि आज क्या है, गोवर्धन पूजा। तो सारा ये हो रहा था, इसकी इतनी तुमुल ध्वनि हो रही थी कीर्तन की, मृदंग आदि की, नगाड़ों की, कि वो ध्वनि कहां तक जा रहे थे, स्वर्ग तक, और स्वर्ग में किसके कानों में चुभ रहे थे, इंद्र के, इंद्र के कानों में वो ध्वनि चुभ रही थी, बड़ा कान बड़े दर्द हो रहे थे। जीव गोस्वामी कहते हैं कि वो भाग के गए, किसके पास, डॉक्टर के पास, उनके डॉक्टर, स्वर्ग में भी डॉक्टर है अश्विनी कुमार, हाँ, जो दो भाई हैं, अश्विनी कुमार के पास गए, उन्होंने कहा कि मेरे कान दर्द हो रहे हैं, कुछ दवाई दे दो कान में डालने के लिए। उन्होंने कहा इसकी कोई दवाई नहीं है, क्योंकि तुम्हें इतनी ईर्ष्या हो गई है, इतना घमंड हो गया है, अहंकार के कारण मरे जा रहे हो, इसको सहन ही करना एकमात्र दवाई है। तो फिर इंद्र केवल उस नगाड़े की, कीर्तन की आवाज को सहन करते हैं, और फिर उनका सरदर्द भी बहुत बढ़ने लगता है। तो ऐसा सारा अन्नकूट, सारे व्यंजन रखे गए गिरिराज गोवर्धन के सामने। तो फिर साक्षात कृष्ण ने कहा, देखो देखो, आज साक्षात गिरिराज गोवर्धन प्रकट हो गए हैं, आप सबके जो अपने व्यंजन या भोग अर्पित किए हैं उनको स्वीकार करने के लिए। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं इसके बारे में, वो कहते हैं कि ये चतुर व्यक्ति है। ये कौन बोल रहा है ब्रजवासियों को, कृष्ण बोल रहे हैं। वो कहते हैं कि ये चतुर व्यक्ति जो कृष्ण है, वो एक लाइन लिखते हैं, चतुरानन की चातुरी को चूर्ण करने से, चूर्ण करने के लिए चतुर कृष्ण बोलने लगे। चतुरानन मीन्स चार मुख वाले ब्रह्मा, उनकी भी चातुरी को उन्होंने एक बार चूर्ण कर दिया था। तो ऐसे चतुर कृष्ण ब्रजवासियों को बोलने लगे कि देखो देखो, गोवर्धन के ऊपर एक बड़ा रूप धारण करके गिरिराज प्रकट हो गए हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं इन दोनों में कोई अंतर नहीं था, दो रूपों में, एक रूप छोटा सा था जो बोल रहा था नीचे से, और दूसरा ऊपर देखे ऐसा दिखा रहा था कि मैं अभी तैयार हूं भोजन स्वीकार करने के लिए। तो ऐसे गिरिराज प्रकट हो गए। फिर कृष्ण ने कहा, नीचे से कहा, छोटे से है, बलराम के कंधे में हाथ रखा है, ब्रजवासी देख रहे हैं। अभी सारे पूजा विधि को गाइड करने वाले कौन है गोवर्धन पूजा के लिए? कृष्ण है। एक ही फेस्टिवल ऐसा है जो जिसमें कृष्ण ने लीडरशिप ली और जिसको उन्होंने मनाया और सबको एंगेज कर दिया। हाँ, तो ऐसे खड़े हो गए, उन्होंने उनको प्रश्न पूछा, गिरिराज जो प्रकट करे तुम कौन हो, नीचे से पूछा। वो कहते हैं मैं गोवर्धन हूं। तो सारे को बोला, जैसे सबसे पहले कृष्ण ने प्रणाम किया, बलराम ने प्रणाम किया, तो ये सिखाने के लिए सारे ब्रजवासी झुक गए और प्रणाम करने लगे। तो जो ब्रजवासी समझने लगे कि ये कोई पर्वत रूप धारण नहीं कर रहा है, ये जो जिसने पोतना को मारा है ना अभी अभी कुछ साल पहले, उसने ये रूप धारण करके ऊपर खड़े हैं। तो ऐसे सब चर्चा कर ही रहे थे, तो फिर भगवान कृष्ण कहने लगे कि आप क्या कीजिए, अभी हमारे प्रणाम को स्वीकार कीजिए और हमने इतने सारे जो व्यंजन अर्पित किए हैं इनको आप स्वीकार कीजिए। तो कृष्ण नीचे से हंस रहे थे, ऊपर से गिरिराज भी हंस रहे थे। तो गिरिराज गोवर्धन ने क्या किया, कहने लगे गिरिराज गोवर्धन कि आपने आज तक बहुत सारे विग्रहों की पूजा की है, लेकिन किसी विग्रह को देखा है कि वो हाथ ऐसा आगे बढ़ा के खा रहे हैं? नहीं, सारे अपने हाथ लेकर ऐसे खड़े हैं। कहते देखो अभी मेरे हाथ, गिरिराज ने अपने लंबे हाथ ऐसे फैलाए, इतने तक फैलाए कि जहां मालपुआ का सरोवर था, मालपुआ जिसमें स्टोर किया था, उठाए उसको खाने लगे और खत्म कर दिया कुछ ही क्षणों में। तो ये ब्रजवासियों का वर्णन कवि कर्णपुर लिखते हैं उनके ग्रंथ में इस लीला को, वो कहते हैं ये ब्रजवासी आश्चर्यचकित होकर अब पक्षी चातक पक्षी के भांति ऐसे ऊपर देखते थे फिर नीचे देखते थे, हाथ ऊपर जाता था तो देखते थे कैसे खा रहे हैं और जब हाथ नीचे आता तो कैसे उठा रहे हैं, कोई स्पून की आवश्यकता नहीं है। हाँ, वहां उनका हाथ ही अपने आप स्पून है। तो ऐसे गिरिराज ग्रहण करने लगे और ये ब्रजवासीगण दौड़ते हुए जाते थे उस सरोवर के पास जहां स्टोर किया था, अभी खत्म हुआ कि नहीं, फिर वहां से दौड़ते थे, अभी खीर में हाथ डाला गोवर्धन ने तो वो खत्म होते वहां पहुंचते थे कितना बचा है, फिर वहां से दौड़ते थे कि वहां जो जूसेस रखे थे वहां दौड़ते थे। वो बेचारे ब्रजवासी दौड़ते दौड़ते थक गए और ये हाथ बढ़ा बढ़ा कर खाने लगे। जीव गोस्वामी लिखते हैं कि बीच बीच में अपना जैसे आप कुछ स्वीट खाते तो बिना चम्मच के इस उंगली को यूज करते, कुछ लोग तो अंगूठे को यूज करते टक करके खाते, कुछ लोग उंगली से। तो गोवर्धन कहते हैं इंद्र को जानबूझ के दिखाने के लिए, उसका और क्रोध लाने के लिए उंगली से खा लेते थे, ऐसे चाटते थे और ऐसे दिखाते थे। तो इंद्र इसे देखकर और भी अधिक क्रोधित हो जाता था। तो इस प्रकार से ये सब हो रहा था और भगवान जो गोवर्धन है गिरिराज है उनके इस कार्य को देखकर जो वृद्ध लोग हैं वो आश्चर्यचकित हो रहे थे, बच्चे भय के मारे कांप रहे थे और युवा वर्ग क्या है वो हंस रहे थे, ऐसे ब्रजवासियों में जल्लोस था। फिर उनको जब उन्होंने सब ग्रहण किया अन्य और कहने लगे अरे और लाओ और लाओ और लाओ, फिर ब्रजवासी बेचारे थक गए और क्या लाए। उसमें से एक चतुर भक्त था, वो दौड़ते हुए गया, क्या लाया उसने, तुलसी, तुलसी का एक पत्र लिया रखा, ये रहा गिरिराज महाराज आप इसे स्वीकार कीजिए। तो उन्होंने जैसे स्वीकार किया डकार आने लगे, गिरिराज संतुष्ट हो गए। फिर उन्होंने सोचा भी गुलना करना होगा, पानी पीते ना प्रसाद के बाद, तो एक सरोवर को पूरा ऐसे दो हाथों से लेके डाल दिया गुलना करने के लिए। और फिर वर्णन आता है कि दूर से पिचकारी जैसे मार दिया गिरिराज के वहां दूर, तो वहां उनके पिचकारी से कई सारे घास वृक्ष आदि तुरंत बड़े बड़े होने लगे। फिर भगवान उन्होंने देखा कि एक जगह तांबूल भी रखा है, पान भी खाने के लिए रखा है, तो सारे व्यवस्था थी, भोग में कोई कमी नहीं थी। क्या भगवान को चाहिए, कौन सा व्यंजन कौन से समय में, वो सारी चीजें सुव्यवस्थित रखी थी ब्रजवासियों में। यही तो प्रेम का लक्षण है। प्रेम का लक्षण क्या है, ब्रजवासी इसलिए सर्वश्रेष्ठ है कि उनको पता है कृष्ण को क्या चाहिए, कितनी मात्रा में चाहिए, कौन सी समय कौन सी चीज कौन से समय चाहिए। तो ये सब जब हुआ तो भगवान ने तांबुल ग्रहण किया तो उनके जो ओठ आदि लाल हो गए। मानो ऐसा वर्णन आया है मानो कि सुबह सुबह सूर्य उदित हो गया है और जिसकी जिससे उसकी सुबह की जो लालिमा है वो चारों दिशा में छा गई हो। तो ऐसे जब गिरिराज जी आनंद उठा रहे थे और पान भी चबा रहे थे तो फिर ब्रजवासियों ने आरती करना शुरू कर दी। फिर आरती आदि की प्रार्थनाएं की दंडवत प्रणाम आदि किए और फिर ब्रजवासीगण तैयार हो गए। किस चीज के लिए तैयार हो गए? परिक्रमा करने के लिए, क्योंकि कृष्ण ने कहा था, भगवान ने कहा कि आप क्या करो इसके बाद परिक्रमा करो सारे ब्रजवासी, अपने गौओं को लेकर पुत्र पत्नी सबको लेकर परिक्रमा में निकलो। भगवान ने यह भी कहा पैदल नहीं कर सकते हैं तो गाड़ियों में बैठ जाओ बैलगाड़ियों में, लेकिन गिरिराज की क्या करो परिक्रमा करो। इसलिए हम लोग किस में बैठते जाकर रिक्शाओं में बैठते लेकिन परिक्रमा जरूर करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान का यह आदेश था तो जब परिक्रमा का समय आया तो सारे ब्रजवासी उत्साहित हो गए। भगवान ने कहा सबसे पहले किसको भेजो परिक्रमा में? सफेद वर्ण की गवे, उसके बाद ब्राह्मण, फिर कम्युनिटी के जो लीडर्स हैं वो जाए, उनके बाद उनके जो सेवक असिस्टेंट है वो जाए, फिर उनके बाद उनकी पत्नियां होनी चाहिए। हाँ, परिक्रमा में सीक्वेंस है, पहले कीर्तन टीम जाती है, फिर प्रभु जी, फिर माता जी और फिर जो सेवकगण पीछे। अभी तो सारे एक साथ, हाँ, जैसे कोई 12 जा रहे हो। तो यहाँ कृष्ण कहते कि ऐसे सीक्वेंस में भेजो, फिर उनकी पत्नियां और फिर टीनेजर गर्ल्स उनको भेजो, फिर दासियों को भेजो, हाँ, और फिर बाकी जो हाथ में डंडे लेकर ब्रजवासी निकलो, कुछ कुछ सेवक जो रक्षा करने के लिए। तो ऐसे सब जा रहे थे यशोदा माता रोहिणी आदि, और कृष्ण अपने सखाओं के साथ निकले हाथ में लाठी लेकर, और वो नाचते हुए जा रहे हैं, कभी लाठी आगे फेंकते तो दौड़ते हुए जाकर पकड़ते, परिक्रमा में भी मस्ती। तो और उनको देखने के लिए सारी गोपियां तैयार थी, कहां कृष्ण है, कहां लाठी फेंक दी। और फिर इतना ही नहीं, माता यशोदा और रोहिणी कृष्ण पर नजर रखती है परिक्रमा में भी। तो ये जब हो रहा था तो फिर सारी गोपिकाएं एकत्रित हो गई और गीत गाने लगी। जीव गोस्वामी ने उस गीत का वर्णन किया है एक ग्रंथ में, तो कहती है, कहते हैं कि वो परिक्रमा में गीत गाया उन्होंने, उसमें से एक गोपी एक प्रश्न बोलती थी और सारी गोपियां प्रश्न के उत्तर में गाती थी। तो वो श्लोक मैं पढ़ता हूं, गिरि पूजयम विहिता केन अर्च शक्र पदम अभयम जेन। तो इसका मतलब है वो पहला एक क्वेश्चन पूछती है गोपी सिंगल, वो कहती गिरि पूजयम विहिता केन, किसने गिरिराज की पूजा शुरू कर दी, ये प्रश्न था। तो फिर जितनी गोपियां थी वो सारी बोला करती थी एक स्वर में अर्च शक्र पद अभयम जेन, जिन्होंने इंद्र पद स्थापित किया है और इंद्र को दंडित करने वाले हैं, ऐसे जो कृष्ण हैं, उन्होंने क्या किया है, ये परिक्रमा शुरू की है, उन्होंने पूजा शुरू की है। गिरे पूजयम विहिता केन भूतनिका सनिहिता जेन। फिर एक सिंगल गोपी कहती है अरे गिरिराज की पूजा किसने शुरू की? फिर सारी गोपिकाएं कहती है जिसने पूतना का वध किया। नेक्स्ट गोपी कहती है गिरि पूजयम विहिता केन तृणावर्त तनु दलनम जेन, गिरिराज की पूजा किसने प्रारंभ की? बाकी गोपिकाएं कहती तृणावर्त का जिसने दलन किया उन्होंने गिरिराज की पूजा प्रारंभ की है। गिरि पूजयम विहिता केन यमलार्जुन तरु उदकलि जेन, उखल तो एक गोपी कहती किसने किसने गिरिराज की पूजा शुरू की? बाकी सारी गोपी की गोपियां एक स्वर में हर्ष उल्लास से कहते हैं कि जो उखल से बंधे गए थे ना और उन्होंने यमलार्जुन वृक्ष को गिरा दिया उन्होंने शुरू किया है। या इसे लीला गीत, लीला का वर्णन हो रहा है। आगे कहती है गिरि पूजयम विहिता केन वत्स बकासुर हननम जेन, मीन सारी लीलाओं का हम स्मरण रख सकते हैं। तो गिरिराज की पूजा किसने शुरू की? वो कहते जिन्होंने वत्सासुर बकासुर का हनन कर दिया,
गिरि कुजेयम हिता केना वेम अगासुर मरणम जेना।
गिरिराज की पूजा किसने शुरू की? वो कहते कि व्यमासुर और अगासुर का जिसने वध किया।
गिरि कुजेयम हिता केना कालिय दमनम कलितम जेना।
किसने गिरिराज की पूजा शुरू की? कालिया को जिसने दंडित किया। आगे कहते हैं गिरि
पुजेयम विहिता केना खला प्रबल प्रलंबक शमनम जेना।
गिरिराज की पूजा किसने शुरू की? जिन्होंने प्रलंबासुर को दमित किया।
गिरि पुजेयम विहिता केना दवयुग्मा परिपीतम जेना।
एक गोपी ने गाया कि गिरिराज की पूजा किसने शुरू की? बाकी गोपियों ने कहा जिन्होंने दो बार दावानल का पान किया है उन्होंने गिरिराज की पूजा शुरू की है।
गिरि पुजेयम विहिता केना त्रशति कंस सततम जेना।
यह आखिरी था। एक गोपी ने आखिरी प्रश्न पूछा गिरिराज की पूजा किसने शुरू की? तो बाकी गोपियां कहती है त्रशति कंस सततम जेना, जिससे कंस सतत भयभीत रहता है उसने गिरिराज की पूजा शुरू की है। तो सारे लोग गिरिराज की पूजा करते हैं हंसते हुए नाचते हुए गाते हुए। सारी गोपिकाएं पूजा परिक्रमा खत्म करके अंत में वापस आते हैं अन्नकूट क्षेत्र में और वहां आकर उस रात्रि में सब लोग वहां ही निवास करते हैं सारे ब्रजवासी कृष्ण बलराम अपने सखाओं के साथ। फिर दूसरे दिन मीन्स कल के दिन जो भ्रातृ द्वितीया है तो भाई द्वीज जिसे कहते हैं कल के दिन फिर क्या करते हैं सब लोग यमुना में स्नान करते हैं यमुना की ग्लोरीज को सुनते हैं यम और यमी जो ये बहन भाई हैं उनके बारे में सुनते हैं और फिर भगवान अपनी जो बहन है उपनंद की जो पुत्री है सुनंदा उसके घर जाते हैं। उसके घर जाकर क्या करते हैं क्यों जाते हैं व्यंजनों को स्वीकार करने के लिए भोजन आदि को स्वीकार करने के लिए। तो भगवान दूसरे दिन जाते हैं और वास्तव में कल के दिन आज के दिन तो पूजा की लेकिन गोवर्धन को कब उठाया था भगवान ने कल के दिन उठाया था। तो इस प्रकार से भगवान दूसरे दिन वहां जाते हैं अपने सिस्टर के यहाँ सुनंदा के यहाँ क्योंकि उसका आमंत्रण था। उसने कई सारे व्यंजन बनाए थे उस व्यंजनों को देखकर भगवान अपने सखाओं को ले गए थे और सखाओं में पेटू सखा थे जिनका नाम क्या था मधुमंगल ब्राह्मण थे। हाँ, ब्राह्मण को संतुष्ट करना है तो उसको अच्छे से खिलाओ और किसी क्षत्रिय को संतुष्ट करना है तो उसको मान सम्मान आदि दो वैश्य को संतुष्ट करना है तो उसको लाज धन आदि दो उसको कुछ तो वो संतुष्ट हो जाता है वो अपना हो जाता है कंट्रोल में हो जाता है। तो वैसे ही मधुमंगल ब्राह्मण थे ब्राह्मण भोजन प्रिय शास्त्र कहते ब्राह्मण को भोजन आदि प्रिय है। तो मधुमंगल जब वहां पहुंचे तो वहां उन्होंने कहा कि अरे कल के गोवर्धन पूजा से अच्छा दिन तो आज का है कल इतने सारे व्यंजन बनाए लेकिन हमें कुछ मिला नहीं किसने सारा मार लिया गिरिराज गोवर्धन ने आज तुम्हारे बहन के यहाँ आए हैं ये व्यंजनों की सुगंध से मेरा पेट भारी भारी सा हो रहा है मुझे लग रहा है कि कब मैं शुरुआत करूं। तो उन्होंने बहुत व्यंजनों का आस्वादन किया और फिर मधुमंगल कहने लगे कृष्णा अच्छा होता आपकी 360 सिस्टर्स होती हर रोज हमें बहन के घर जाते हर रोज हमें क्या मिलता अलग अलग व्यंजनों का आस्वादन करने को मिलता। तो फिर भगवान उसके बाद वापस वृंदावन आते हैं और ये सब चीजें हो रही थी एक दो दिन का टेंशन एक व्यक्ति दुखी था सारे लोग गोवर्धन पूजा में आनंद मना रहे थे एक व्यक्ति से रहा नहीं गया उसका घमंड अभी चूर्ण चूर्ण हो रहा था टुकड़े टुकड़े हो गए थे और वो कौन थे इंद्र देवता इंद्रराज। तो ऐसे इंद्रराज के हृदय में पीड़ा हो रही थी मानसिक संताप भी बढ़ रहा था जलन हो रही थी और क्रोध में आकर खेद पूर्वक वो वचन बोलने लगे अहो आश्चर्य क्या आश्चर्य छोटे से बालक की बात सुनकर ये पशु पालने वाले पशु के समान ये ब्रजवासी कटु बुद्धि वाले मेरी पूजा छोड़कर किसकी पूजा कर रहे हैं किसके गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे वचन जब ये बोल रहे थे मेरे उपासना छोड़कर हाँ ये गिरिराज की उपासना कर रहे हैं, इस बालक के चपेट में आकर उनके बातों में आकर चंचल बुद्धि वाला ये कृष्ण हाँ ये कैसे तुम्हारा हित कर सकता है। तो इतना क्रोधित हो गया इंद्र, जो मन में आए जो जहां जीवा चले सब कुछ बोलते जा रहा था, उसी क्रोध में उन्होंने संवर्तक बादल को बुलाया। संवर्तक बादल को बादल उस समय बुलाया जाता है जब महाप्रलय का समय आता है। तो उनको बोला और उनकी प्रशंसा कर दे उन मेघों की, उनको कहा कि आप जाओ वेगवान हो आप, और आप जल्दी जाकर क्या करो ब्रज में विध्वंस मचा दो, इतनी आगे वृष्टि कर दो कि एक ये जो नगर है भूमि पर ब्रज रूप या वृंदावन उसको विनाश कर दो। तो जब हमारे अंदर फॉल्स ईगो बढ़ जाता है, मिथ्या अहंकार, तो सबसे पहले बुद्धि की नाश, बुद्धि का नाश हो जाता है। फिर सारे विपरीत कार्य हम करने लगते हैं, हर कार्य का हम सोचते हैं कि सही कार्य है। तो इस प्रकार से जब इन बादलों को आज्ञा दी तो कुछ एक ही मुहूर्त में आचार्य जब कहते हैं 48 मिनट में सारा ब्रज में अंधकार छा गया, सूर्य अप्रकट हो गया, तूफान धूल चारों ओर अंधकार आ रहा था, और उस समय बड़े बड़े बूंदे गिरने लगे, ऐसे ऐसी बूंदे थी मानो बड़े बड़े जो वट वृक्ष होता है और उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी होती है ना, क्या कहेंगे उसको, वट वृक्ष की जो जड़ ऊपर से जड़ी आती है कई बड़ी बड़ी साइज की होती है, उस साइज के जो बूंदे हैं वो गिर रहे थे और सारा ब्रज अस्त व्यस्त हो रहा था। सबसे पहला कष्ट गव्वे प्राप्त कर रहे थे, बछड़े रो रहे थे और जो गव्वे हैं बछड़ों को अपने गले में जो कंबल होता है लटका होता है ना गवों के, उसे गल कंबल कहते हैं, उसके अंदर बछड़ों को छुपा कर वो खड़े थे और वेदना उन्हें हो रही थी और भगवान कृष्ण को पुकार रही थी, कृष्ण कृष्ण महाबाहो तुनाथम गोकुलम प्रभो, हे गोकुल के प्रभो, हे कृष्ण आप क्या करो हमारी रक्षा करो, क्योंकि आज तक जितने भी कष्ट आए थे उन सारे कष्टों में आपने ही हमारी रक्षा की थी। उन्होंने कहा, फिर ब्रजवासी गण आए भगवान से प्रार्थना करने लगे कृष्ण से, कृष्ण को कहा कि ऐसे लग रहा है कि ये प्रलय की स्थिति आ गई हो, और वो कहने लगे कि हमने तो इतना महान उत्सव मनाया फिर हमारे ऊपर इतनी बड़ी विपदा क्यों आ रही है, और ऐसे लग रहा है कि ये बिजलियां भी नीचे गिर रही है मानो बड़े बड़े सर्प की जीवा हो जो हमें निगल रही हो। तो इस प्रकार से खंभे के समान बड़े बड़े बूंदे गिर रहे थे और ब्रजवासी दुखी हो रहे थे और सब जगह जल भर रहा था और कृष्ण को सब पुकार रहे थे, कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो भगवान ने क्या किया, उन्होंने कहा कि आप सबको डरने की आवश्यकता नहीं है, हाँ इन सब चीजों से कोई भी कष्ट आपको नहीं होगा, मैं आप सबकी रक्षा करूंगा। भगवान ये भी सिखाना चाहते हैं कि भगवान तो स्वयं कुछ और कर सकते थे लेकिन गिरिराज को उठाया उन्होंने, क्यों उठाया, क्योंकि गिरिराज राधा रानी कहती है कौन है, कृष्णा के बेस्ट डिवोटी है, हरिदास वर्य, हरि के दासों में, वर्य मीन श्रेष्ठ, हरि के दासों में श्रेष्ठ है। तो भगवान इसलिए भी उठाते हैं कि मेरी सेवा में या मुझे प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा, मेरे भक्त के अधीन होना होगा, मेरे भक्त की शरण ग्रहण करनी होगी। इसलिए भगवान क्या करते हैं, गिरिराज को उठाते हैं और उसके नीचे सारे ब्रजवासियों को रखते हैं। और जब ये हो रहा था तो भगवान कृष्ण क्या करते हैं, उनको कहते हैं आप डरो मत, और फिर भगवान देखते हैं कि इंद्र बहुत अधिक उपद्रव मचा रहा है, तो भगवान तुरंत ही गिरिराज गोवर्धन को उठाते हैं अपने लेफ्ट हैंड के छोटी सी उंगली पर, उसके अग्र भाग में, मानो ऐसे है कि कोई रुई को उठाया हो और रुई अपने आप में आकाश में तैर रही हो, ऐसे हो रहा था। गिरिराज अपने आप ही आकाश में एक प्रकार से तैर रहे थे, कृष्ण ने उनको धारण तो किया था। तो ऐसे गिरिराज को उन्होंने उठाया श्रील प्रभुपाद कहते कि उस प्रकार से उठाया मानो कोई हाथी आपने सुंड से सरोवर में किसी कमल पुष्प को ऐसे ऊपर कर दिया, उठा ले। तो जब वो उठाया तो इतना ऊंचा हो रहा था कि मेघ जो बादल है वो भी साइड में हो गए, बादलों से ऊपर भी गिरिराज चले गए और सारे जो अलग अलग पर्वत है सुमेरु आदि वो उनकी ओर देखने में कि अरे ये क्या हो रहा है, कौन इतना ऊंचा आ रहा है। तो सब वो गिरिराज गोवर्धन को देख रहे थे और फिर ब्रजवासियों को कृष्ण कहने लगे, हे माता, हे पिता, हे मित्रगण, हे गोपिकाओं, आप सब क्या करो, डरो मत, मेरे हाथ से ये गिरिराज गिरने वाला नहीं है और आप सबने पर्सनली गिरिराज को देखा है, उनको आपने ऑफरिंग्स किए हैं और सबसे बड़ी बात कि आपकी आंखों के सामने गिरिराज ने क्या किया, उन सारे जो ऑफरिंग्स थे उनको स्वीकार किया है। तो आप सब लोग बिना डरे हुए अपने गवों को, बछड़ों को, वस्तुओं को लेकर गिरिराज में आ जाओ, उनके नीचे आ जाओ। अजय गोस्वामी कहते हैं उनके नीचे तो ऐसा वातावरण था, चिंता मणि से बना हुआ स्थान था, वहां सब कुछ था, गिरिराज के अंदर बैठने की सारी व्यवस्था थी, खाने पीने के लिए भी सारी व्यवस्था थी, लेकिन सारे ब्रजवासी आ जाते हैं, उनके नीचे बैठ जाते हैं। तो कहते कि कैसे बैठे थे सारे लोग, सबसे बाहर का जो राउंड था वो गौओं का था, उनके अंदर ब्राह्मण थे, थर्ड में सारे गोपाल थे, फिर उसके बाद पति थे सारे हस्बैंड, फिर जिन सारी स्त्रियां थे और फिर राधा रानी और सारी सखियां बैठे थे, उनके बाद यशोदा माता और रोहिणी वगैरह थे और भगवान की दो चार सखा उनके बहुत करीब थे, कुसुमा, सौ, श्रीराम, सुदामा, सुबल, मधुमंगल, ये सारे उनके पास थे नंद महाराज और यशोदा के साथ। तो ये सारे ऐसे बैठे थे और हर कोई व्यक्ति, 7 दिनों तक भगवान ने गिरिराज को धारण किया लेकिन किसी को ना भूख थी ना प्यास थी। आचार्यगण कहते किसी गाय या बछड़े को भूख प्यास नहीं लगे तो ब्रजवासियों को कैसे लग सकती है। तो ऐसे भगवान ने ब्रजवासियों को एकत्रित किया और इसका एक मेव कारण था, भगवान एक साथ एक समय में सारे ब्रजवासियों से उनके भावों का, रसों का आदान प्रदान करना चाहते थे। तो जब ये हुआ तो भगवान अपने आंखों से सारे ब्रजवासियों के को पी रहे थे और सारे ब्रजवासी एवं गव्य भी भगवान के सौंदर्य का पान कर रहे थे। तो उस समय मधुमंगल ने देखा कि कृष्ण अपने हाथ में गोवर्धन लेके खड़े हैं, तो उन्होंने कहा इसमें सबसे अधिक दुखी थी माता यशोदा। माता यशोदा दुखी थी, मेरा छोटा सा बालक है, सुबह से कुछ खाया नहीं है और इसने गोवर्धन को उठा के रखा है, इतने बड़े देख के वो मूर्छित हो जाते थे और बीच बीच में जाकर उसको चेक करते थे कि यहाँ दर्द तो नहीं हो रहा है, थोड़ा सा मसाज भी करते थे, फिर वो बोलते थे थोड़ा कुछ खाओ, हे बेटा कुछ खाओ। मधुमंगल कहता है कि हे श्याम, देखो मैं तो ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण मीन्स जिसके पास ब्रह्म तेज हो, ऐसा वैसा तेज नहीं, ब्रह्म तेज होना चाहिए, ब्रह्म वर्चस्व भी हूं मैं, हे सखा मेरे विद्यमान होते हुए तुम्हें कोई खेल थोड़ी है, मैं धारण करूंगा अपने ब्रह्म तेज से, किसे, गिरिराज गोवर्धन को, हे कमल नयन कृष्ण, बस तुम मुझे आज्ञा दे दो, क्षण भर के लिए तुम इसको निकालो अपने डंडे से, और भी सुवर्ण जड़ित डंडा है मेरा, इसके द्वारा मैं क्या करूंगा, गिरिराज को अग्र भाग में उठा के रख दूंगा, तुम कुछ समय के लिए विश्राम करो। यशोदा कहती है बेटा तुम सही हो, तुम ही एक हो जो मेरे दुख को समझ सकते हो। अभी बोलने वाले थे मधुमंगल, बोलना ज्यादा और खाना ज्यादा इनका काम था। तो ऐसे जब यशोदा माता कहने लगे तो फिर उन्होंने कहा कि देखो देवताओं से तिरस्कार, यशोदा माता के जब देखा देवताओं से तिरस्कार करने का क्या नतीजा होता है, कितना कष्ट भुगतना पड़ता है, इवन पहाड़ भी उठाने पड़ते हैं। तो ऐसी माता यशोदा उनको बोल रहे थे और वो जाकर कृष्ण के हाथ को चेक करती थी, कहती थी लाला आपका जो भुजमंडल है वो अभिनव नवनीत के समान, नवनीत मीन्स माखन, माखन के भी अलग अलग कैटेगरीज हैं, तो ऐसे माखन के तरह, माखन की तरह अत्यधिक सुकोमल है, शीतल है। तुम क्या करो, ये गिरिराज को ये सारे गोप अपने डंडों से उठा देंगे, अरे मधुमंगल रहा ब्रह्म वर्चस्वी ब्राह्मण, ये सब मिलके उठा लेंगे, तुम थोड़ा छोड़ दो हाथ और क्या करो, थोड़ा सा भोजन कर लो। कृष्ण कहते मैया ये तो रुई के समान ये आकाश में क्या हो रहा है, तैर रहा है, मेरे पास कुछ भी इस गोवर्धन का भार नहीं है। तो मधुमंगल कहते हैं कि इंद्र ने बहुत अधिक कृपा कर दी है कि आप सबके साथ क्या किया है, सबके साथ कृष्ण को रखा है और इतने लंबे समय के लिए, ताकि हम कृष्ण के सौंदर्य का निरंतर पान कर सकते हैं। तो ये विशेष महोत्सव था, भगवान ने गिरिराज को धारण किया था ताकि सारे ब्रजवासी उनके साथ एक समय में रहें। तो वो कहने लगे कि ताकि भगवान, मधुमंगल कहने लगे कि कृष्ण के साथ सारे जो भक्त हैं, ब्रजवासी गण हैं, वे माधुर्य रस का पान कर रहे हैं। यशोदा कहती है काहे का माधुर्य रस, देखो कितना पसीना उससे निकल रहा है बेचारा कृष्ण, उसका मुंह सूखा जा रहा है। माँ को बेटा जितना मर्जी ठीक हो, कैसे दिखता है, दुबला पतला सूखा पसीने से लथपथ, ऐसा सब कुछ दिख रहा था यशोदा माता को। और कृष्ण ने कहा मैं तो निमित्त मात्र हूं, वो अपने आप ऊपर तैर रहे हैं गिरिराज। तो नंद महाराज कहते हैं मधुमंगल ऐसा ही इंस्पायर करते रहो, इंस्पिरेशन चाहिए, इतना बड़ा पहाड़ उठाया उन्होंने कंटिन्यू। तो इस प्रकार से ये चर्चाएं हो रहे थे और फिर फाइनली कृष्ण को मधुमंगल कहते हैं कि कृष्णा तुम क्या मत, कृष्णा इतना होने के बावजूद भी अपने बांसुरी बजा रहे थे, एक हाथ में उद्धारण किया है, दूसरे हाथ से बांसुरी बजा रहे। मधुमंगल कहते बांसुरी बंद करो, तुम्हारे बांसुरी का नतीजा हमें पता है, सब पिघल जाता है, पहाड़ पिघल गया तो कहते वहां यमुना नदी तुम्हें क्रॉस करनी होती है सखाओं के साथ, गवों के साथ, तुम बांसुरी बजाते हो तो यमुना ये हो जाती है, बर्फ बन जाती है, फिर उसके ऊपर चल के चले जाते हो उस तरफ और सारे सबको आकर्षित कर देते हो, सबके हृदय को पिघला डालते हो, पत्थर भी पिघल जाते हैं, अभी गलती से बांसुरी मत बजाना बंद कर दो। तो सुबल नाम जो सखा थे वो बांसुरी छीन लेते हैं और फिर उस समय सारी सखियां वहां थी। तो उस समय एक सखी श्यामा सखी राधा रानी को कहते कि हे राधा रानी, राधा रानी को कहते हे सुमुखी, सुमुखी मीन्स सुंदर मुख वाले, हे सुमुखी हे राधिके, जब तक कृष्ण ने गोवर्धन धारण किया है तब तक आप अपने नेत्र चंचल मत करो, मतलब कृष्ण की ओर देखो मत। यदि तुम कृष्ण की ओर अपना कटाक्ष डालोगे तो क्या हो जाएगा, कृष्ण हिलने लगेंगे, सारे जो विकार है ना, रोमांच कंपास सब आ जाएंगे और फिर गिरिराज सीधा हमारे ऊपर आकर गिरेगा। तो राधा रानी को भी सखिया आगाह कर रही है और फिर इस प्रकार से ये सब चीजें हो रही थी। और फिर देखा कृष्ण कुछ खा नहीं रहे थे तो उनकी बांसुरी तो ले ली थी, फिर माता यशोदा जबरदस्ती खिलाने लगी। मधुमंगल को सबसे अधिक आनंद हो रहा था क्योंकि कृष्ण खाए तभी इनको मिलेगा खाने के लिए, तो उन्होंने कहा ये पूरा जोर लगा रहे थे। हाँ माता यशोदा ने उनको खिलाना शुरू किया, माता यशोदा कहते देखो 7 दिन से तुम्हारा पेट पतला हो गया है, दुबले पतले हो गए हो, तो और जो वस्त्र है उनका बंधन भी शिथिल हो गया है क्योंकि पेट का साइज छोटा हो गया तो वस्त्र भी ढीले हो गए। तो इस प्रकार से ऐसी सारी चर्चाएं हमारे आचार्यों ने दी हैं, विशेष रूप से कवि कर्णपुर और जीव गोस्वामी ने इस लीला को कई अध्यायों में वर्णन किया है। और फिर जैसे कृष्ण ने उसको स्वीकार किया, थोड़े से भोजन को बाकी सखागण भी खाने लगे और जो गायें हैं बछड़े हैं वो भी घास खाने लगी और ये जो सखागण है दूध दही मलाई मक्खन सब खाने लगे जोर जोर से। और फिर समय आया कि अभी भगवान चाहते थे कि यहाँ से बाहर निकाला जाए, तो उन्होंने देखा कि अभी इंद्रदेव इतनी सारी वर्षा करके थक गए थे और इंद्र इंद्र भेजते थे अपने प्रतिनिधि को, जाके देखो ब्रज में क्या हो रहा है। एक प्रतिनिधि जाकर कहते कि पानी दिखाई नहीं देता। अलग अलग आचार्य जन वर्णन करते हैं कि चक्र भी आ गया था, गिरिराज के ऊपर चक्र घूम रहा था, जल जितना आता था मानो तवे के ऊपर जल डाल के जैसे उड़ जाता है वैसे चक्र के द्वारा सारा जल गायब हो गया था। वो उनका प्रतिनिधि जाकर स्वर्ग में इंद्र को कहता है जल तो दिखाई भी नहीं दिया बल्कि किसी चींटी को भी कुछ हानि नहीं हुई। इंद्र आदि गुस्से हो गए और भी सबको भेजते थे जल वर्षा करने के लिए। तो ऐसी कई सारी घटनाएं बीते और भगवान ने देखा कि सूर्य पुनः उदित हो गया है, मृग आदि खेल रहे हैं और बाहर सुरम में वातावरण है। तो भगवान ने कहा कि बाहर निकलो, अभी सबसे पहले गवों को कहा, कोई गाय बाहर जाने के लिए तैयार नहीं थी, वो कृष्ण को एकटक देख रहे थे। हाँ, तो भगवान ने उनकी ओर देखा और उनको अपने कृपा दृष्टि का इशारा किया, उससे सारी गवें बाहर जाती हैं। फिर सारे ब्रजवासी गण, गोपिकाएं, नंद महाराज, यशोदा, सखियां, ये सब बाहर निकलते हैं और फिर कृष्ण क्या करते हैं, अपना जो गिरिराज है उसको नीचे रखते हैं। जैसे भगवान बाहर आ गए तो हरेक भक्त, हरेक ब्रजवासी भगवान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना चाह रहा था। हाँ, तो जो बड़े थे उन सबने भगवान को आशीर्वाद दिए, जो समकालीन थे उन सबने उनको आलिंगन किया। हाँ, और किसी ने उनकी स्तुति की और विशेष रूप से जो गोपिकाएं थे उन्होंने प्रार्थनाएं की। उनमें से एक प्रार्थना थी, गोपियां गाने लगी, व्रज जन बंदो करुणा सिंधो दृढ़तर बंदो नखलु मदांदो भजते भवंतं भुविविहरंतं त्रिभुवन कांतं समहसे संतं। तो वो कहती है कि हे कृष्णा, आप अपने स्नेही गण को सबसे अधिक सुख देने के लिए ही इस पृथ्वी में प्रकट हो गए हो, मीन्स आपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए आप इस जगत में अवतरित हो गए हो। और त्रिभुवन कांतम, त्रिभुवन में आपसे अधिक सुंदर कोई नहीं है और आप अपने दिव्य तेज से इस जगत में सदैव विराजमान रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, कौन से, खलु मदांदो, ऐसे कुछ ऐसे लोग हैं जो संसारी, जिनका संसारिक बंधन बहुत अधिक दृढ़ है और वो भौतिक उपाधि, भौतिक योग्यता आदि के कारण क्या हो गए हैं, मदांत हो गए हैं, वो आपका भजन कदापि नहीं कर सकते। इस प्रकार की प्रार्थना, फाइनल प्रार्थना ये गोपिका या ब्रजवासीगण करते हैं भगवान कृष्ण को और इस लीला का समापन होता है। तो इस प्रकार से गिरिराज की ये जो लीला है, गोवर्धन लीला, जिसका वर्णन शुकदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवतम में किया था और उसी लीला को हमारे आचार्यों ने क्या किया, और विस्तारित रूप प्रदान किया है। तो प्रभुपाद ने उत्सव हमें प्रदान किया है और रोज हम गिरिराज गोवर्धन का स्मरण करते हैं। सुबह एक तो जय राधा राधा माधव जो सॉन्ग है उसमें भी हम गिरिराज का वर्णन को सुनते हैं। प्रेम ध्वनि में भी प्रभुपाद ने हमें रोज गिरिराज का स्मरण करने के लिए दिया है। प्रभुपाद कहते हैं मेरा नाम भी क्या था, एक गोवर्धन, लीलामृत के शुरुआत में आता है, प्रभुपाद का एक नाम गोवर्धन था। प्रभुपाद कहते हैं जब हम छोटे थे तो ये बच्चे पूरा नाम नहीं बोलते थे, गोवर्धन गोवर्धन नहीं, क्या बोलते थे, गोरु गोरु कहते थे। कहते मुझे मेरे मित्रगण है वो गोरु कह के पुकारते थे। तो ये गोवर्धन भगवान कृष्ण से अभिन्न है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कृष्ण कलेवर, चैतन्य महाप्रभु जब गए और उन्होंने सर्वप्रथम कुसुम सरोवर के पास प्रथम बड़ा शिला देखा गिरिराज का, महाप्रभु गए और वहां उन्होंने आलिंगन किया, अपने आंसुओं से उसका अभिषेक किया और स्वयं भी गिरिराज शिला का पूजन चैतन्य महाप्रभु करते थे जगन्नाथपुरी में। उनको शंकरारण्य सरस्वती ने गिफ्ट किया था गिरिराज शिला, उसी शिला को चैतन्य महाप्रभु ने किसको दिया था? रघुनाथ दास गोस्वामी को। रघुनाथ दास गोस्वामी रोज उनकी सेवा करते थे और नरोत्तम दास ठाकुर भी एक शिला का, गिरिराज शिला की पूजा करते थे। आज भी गोकुलानंद मंदिर में वो शिला है जिसपे चैतन्य महाप्रभु के अंगूठे के निशान है। जिस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया कि साक्षात कृष्ण है, गिरिराज के ऊपर कभी भी कदम नहीं रखने चाहिए, गिरिराज के ऊपर चढ़ना नहीं चाहिए कभी भी, तो ये चैतन्य महाप्रभु की हमें शिक्षा है। तो हम जो गिरिराज की परिक्रमा करते हैं तो गिरिराज की कृपा को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं। तो आज विशेष दिन है, गोवर्धन के बारे में और पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।